So Krishna, so kya Krishna 365 din mein ek baar prakat hote hain? So hamare shastron mein bataya gaya jis prakar is puri prithvi par kahin na kahin suraj ug raha hai, kahin na kahin suraj ast ho raha hai, kahin na kahin dopahar hai, hai na? Isi prakar भगवान कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं, वो इस पूरे भौतिक जगत में किसी न किसी ब्रह्मांड में घटित होती रहती है ना? जैसे आज भी भगवान कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं, कल भी भगवान कहीं प्रकट होंगे, तो ये पूरा चक्र चल रहा है। कहीं भगवान माखन चोरी की लीला कर रहे हैं कहीं पर, और एक जगह लीला खत्म होगी दूसरी जगह शुरू हो जाएगी, दूसरी जगह खत्म होगी तीसरी जगह शुरू हो जाएगी, कहीं भगवान कालिया दमन कर रहे हैं। तो क्योंकि भगवान की लीलाएं नित्य चलती रहती हैं लगातार, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां, तो इसलिए भगवान की लीलाओं को बोलते हैं नित्य लीला, है ना? नित्य लीला। जिस प्रकार सूर्य भी नित्य लीला कर रहा है, कहीं ना कहीं उदय हो रहा है, कहीं ना कहीं अस्त हो रहा है, है ना? तो जिस प्रकार सूर्य की इको कर रही है ना, तो जिस प्रकार सूर्य बहुत ही तुच्छ वस्तु है कृष्ण के सामने, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहानाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्य आज्ञा प्रभृति संभ्रम काल चक्र गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो सूर्य वो कृष्ण की एक आंख के बराबर है। इको भी आ रही है। ठीक आ रही है ना? पहले मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था क्या बोल रहा हूँ। सो जिस प्रकार सूर्य बिल्कुल तुच्छ वस्तु है कृष्ण के समक्ष, और उसमें भी ये योग्यता है, ये गुण है नित्य लीला का, तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है उनकी भी सारी लीलाएं भगवान की नित्य लीलाएं होती हैं, है ना? सो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट होना, है ना? कि किसी तरह से हम भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाए। प्रविष्ट होकर क्या करेंगे? कंचन ले लेंगे। प्रविष्ट होकर हम कृष्ण की सेवा करेंगे, क्योंकि कृष्ण की लीला में जितने भी लोग शामिल हैं वो सारे कृष्ण की सेवा में लगे, है ना? तो हमारे शास्त्र में बताया गया कृष्ण की सेवा पांच रसों में हो सकती है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, है ना? शांत रस में पेड़ पौधे, नदी, तालाब, धूप, फूल, फल, हाँ, जमीन, ये सब आ जाते हैं शांत में। दास्य में भगवान के जितने भी सेवक हैं, रक्तक, पत्रक, ये सारे सेवक हैं कृष्ण के, हमेशा कृष्ण की सेवा करते रहते हैं, है ना? जिस प्रकार हनुमान जी भगवान राम की सेवा करते रहते हैं, है ना? फिर सांख्य भाव है, उसमें श्री राम, सुदामा, सुदामा भी ऐसा नहीं कि वो सुदामा और चावल वाले सुदामा, वो भी हैं कृष्ण के फ्रेंड हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव है। एक सुदामा और है जो कृष्ण के साथ बकायदा कुश्ती लड़ते हैं और कृष्ण को पटकनी भी दे देते हैं, हरा भी देते हैं, साक्ष्य भाव। तो ये जो है ये साक्ष्य भाव में कृष्ण की सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव में श्रीमती यशोदा माता, है ना, नंद महाराज और जितने भी वृद्ध ब्रजवासी हैं, है ना, वो सारे वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और माधुर्य भाव में, माधुर्य भाव में भी फिर दो तरह का भाव आता है ना, एक स्वकीय होता है और एक परकीय भाव होता है। स्वकीय भाव होता है जो भगवान कृष्ण की रानियां हैं, है ना, भगवान कृष्ण की कितनी रानियां हैं, 16,108, है ना। तो वो स्वकीय भाव में कृष्ण की सेवा कर रही है, लेकिन स्वकीय भाव से भी श्रेष्ठ भाव है परकीय भाव, जो वृंदावन की ब्रज की जो गोपियां वो भगवान की परकीय भाव में सेवा कर रही है। सो ये पांच जो रस हैं, इन पांच रसों में एक कॉमन फैक्टर है, एक ऐसा गुण है जो इन पांचों भावों के अंदर है, वो है सेवा का भाव, है ना। किसी भी भाव में रहेंगे, चाहे नंद महाराज एक भाव में, जैसे हम चैतन्य लीला में देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं, क्या नाम है, जगन्नाथ मिश्रा, है ना, उनकी माता का नाम शची माता है ना। तो निमाई पंडित बहुत शैतान थे एक्चुअली में, बचपन में बहुत शैतान थे, क्या करते थे, गंगा जी के किनारे घर था उनका, घर से जाते थे स्कूल के लिए, स्कूल नहीं जाते थे, गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते थे, और वहां पे ब्राह्मण कुछ है वो गंगा जी में आधे डूब के गायत्री कर रहे होंगे, तो डुबकी लगाएंगे, नीचे से तैर के जाएंगे, उनकी टांग खींच लेंगे, धड़ाम से नीचे गिरा देंगे। कुछ लोग फल फूल लेके रखे होंगे दोनों में, गंगा जी की पूजा के लिए उसमें रेत डाल देंगे, है ना, भोग सामग्री होगी रेत गिरा देंगे उसके अंदर। तो बहुत सारे लोग स्नान के लिए जा रहे होंगे, तो इसकी धोती उठा के उसके कपड़ों में रख देंगे, उसका गमछा उठा के उसके कपड़ों में रख देंगे, सब आपस में ढूंढ रहे, मेरा गमछा कहाँ गया, मेरी धोती कहाँ गई। और जो छोटी छोटी बच्चियां आती थी वहां पर गंगा जी की सेवा के लिए और शिव जी की सेवा के लिए आती थी वो, कि हमें अच्छा पति मिले, तो निमाई पंडित जो है वो शिव जी के लिए जो भोग सामग्री लाती थी सारी खा जाती थी। तो लड़कियां कहती थी ये क्या किया तुमने, तो निमाई पंडित कहते थे शिव जी मेरा दास है, शिव क्या बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला अगर तुम मुझे नहीं खिलाओगे तो मैं श्राप दे दूंगा तुम्हें कि तुम्हारा बूढ़ा पति होगा और उसकी तीन पत्नियां होंगी और ढेर सारे बच्चे पहले से होंगे, संभालते रहना, नहीं नहीं खा लो खा लो। तो सारे मिलके शिकायत लगाने जाते थे जगन्नाथ मिश्र के घर, जगन्नाथ मिश्र कहते थे छोड़ूंगा नहीं, तो निमाई पंडित आते थे डांटते थे उनको, डंडा दिखाते थे, है ना, तो बहुत फटकारते थे जगन्नाथ मिश्र। तो एक बार जगन्नाथ मिश्र विश्राम कर रहे थे तो उनके स्वप्न में एक दिव्य पुरुष आए, उन्होंने बोला देखो जगन्नाथ मिश्र जो ये निमाई पंडित है ये स्वयं कृष्ण भगवान है, इनको डांटो मत, ये परम भगवान है, इनकी सेवा करो। जगन्नाथ मिश्र ने कहा भाग जाओ यहां से, चाहे होगा निमाई पंडित होगा निमाई कृष्ण होगा, लेकिन मेरे पास इसकी देखभाल करने की सेवा है, तो मैं अगर इसको गलत काम देखते हुए गलत काम करते हुए देखूंगा तो मैं तो डांटूंगा भैया। तो उस देवी पुरुष ने प्रणाम किया जगन्नाथ मिश्र को, उसने बोला कि आपका वत्सल्य भाव बहुत ही सराहनीय है ना, उनको प्रणाम किया और वापस हो गया। ऐसे यशोदा माई भी देखो, वो भी डंडा लेके भागी भगवान कृष्ण के पीछे, जब माखन चुरा रहे थे रस्सी से बांध दिया, दामोदर लीला के नाम से फेमस है, नहीं। सो इन सब के पीछे उनका जो लक्ष्य है वो कृष्ण को डांटना फटकारना नहीं है, वो वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण को अच्छा लग रहा है, कृष्ण को अच्छा लग रहा है। जैसे सत्यभामा है, कृष्ण की एक बच्चानी है, तो वो 24 घंटे कृष्ण से लड़ेंगे, है ना, नई नई फरमाइशें करती है, और कृष्ण भी कह रहा है भाई आराम ला रहा हूँ, सांस तो लेने दो, नहीं जाके पारिजात वो पुष्प लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। और एक दो बार तो भगवान कृष्ण को उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए इंद्र से लड़ाई भी करनी पड़ी, इंद्र हार गया अलग बात। सो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि क्या सत्यभामा जो है वो मतलब ऐसे लड़ रही है, मतलब कृष्ण से कोई लड़ना तो होना चाहिए, लेकिन कृष्ण को अच्छा है ना। कई बार जब हस्बैंड वाइफ आपस में थोड़ी बहुत तकरार होती है तो अच्छा लगता है ना, ज्यादा हो तो अच्छा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर घरों में ज्यादा हो जाती जो हस्बैंड है वो संभाल, मैं जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के, फिर वो जाएगा कहाँ पे, है ना, उसका ऐसा घोड़ा है जिसके पीछे तांगा बना हुआ है, घूम फिर के इधर उधर धक्के खा खो के फिर वापस घर आ जाता, अच्छा क्या बनाया है पूछता नहीं पूछता। सो कोई भी भाव रहेगा, कोई भी रस रहेगा, उसके अंदर मुख्य जो बात होती है कि किसी भी तरह से कृष्ण की सेवा करने का उद्देश्य है ना। तो ये जो सेवा भाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान प्रकट होते हैं इस धराधाम में लोगों को सेवा करने का अवसर देने के लिए, इसलिए तो कह रहे हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापना। तो धर्म क्या है, धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म क्या है, धर्म है कृष्ण की सेवा करना, है ना। तो कृष्ण आते हैं ये स्थापित करने के लिए कि देखो आपके लिए सबसे बेस्ट काम क्या है कि आप मेरी सेवा में लग जाओ, है ना। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, है ना। तो कई लोग बोलते हैं धर्म छोड़ दें, कौन सा धर्म छोड़ दें, तो धर्म हमारे आचार्य बताते हैं धर्म जो है धर्म शास्त्र, हमारे 20 धर्म शास्त्र है, तो वो धर्म शास्त्रों को स्मृति भी कहा जाता है। हाँ, सो स्मृति 20 तरह की है एक्चुअली में, याग वल्क्य मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, है ना, पराशर स्मृति, है ना, इस तरह से 20 अलग अलग जो संत हुए हैं उन्होंने अपनी स्मृति मतलब अपनी याददाश्त से उन्होंने बताया है ना। तो जहाँ पर श्रुति अर्थात वेद जो है और उपनिषद, वो अगर माता का उनका दर्जा है, तो जो स्मृतियां हैं जो धर्म शास्त्र है वो सिस्टर बहन का दर्जा है ना, और जो पुराण है वो भाइयों का दर्जा है ना। तो ये जो सारे जो माँ बहन और भाई, ये तीनों मिलके जीव को क्या बता रहे हैं कि देखो सबसे उत्तम तरीका है कि कृष्ण की सेवा में किसी ना किसी तरह से लगा जाए। तो क्वेश्चन है कृष्ण की सेवा में क्यों लगा जाए, कृष्ण की सेवा में इसलिए लगना जरूरी है क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक है और हम भौतिक हैं। हम एक्चुअली में आध्यात्मिक हैं लेकिन हम अभी अपने आप को भौतिक मान रहे हैं, है ना, अहम ममेति, हम अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं, अपने बीवी बच्चे घर वालों को हम सोचते हैं मेरे हैं, है ना, घर मेरा है, ये मंदिर मेरा है, नहीं, तो बड़ा अजीब सा वो एक बात चलती है। तो भगवान को ना शीशे में बंद करके एकदम घुसने वाली बात हो जाती है, नहीं खुला एकदम रखना चाहिए। अगर हमें कोई शीशे में बिठा दे क्या हालत होगी हमारे, नहीं तो हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें पंखे की जरूरत है तो क्या कृष्ण को पंखा नहीं देंगे हम, नहीं, क्या वो अलग बात है। सो अहम अमेति में फंसे हुए हैं। तो शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि शिल प्रभुपाद जो है ना इस्कॉन की स्थापना की जिन्होंने शिलेसी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद, तो इन्होंने बताया कि अगर हम इस भौतिक चेतना से अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं, अगर हम भौतिक चेतना से बाहर निकल के आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट होना चाहते हैं तो वो जो रास्ता है, वो रास्ता जिससे वो खिड़की जो है जिसके जिसमें से हम कूद के हम भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश होंगे, वो खिड़की का नाम क्या है? सेवा भाव, है ना। अगर हम फॉर एग्जाम्पल आप बोलो हमने तो घर में कृष्ण रखे हुए, लड्डू गोपाल रखे हुए, हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने रखे हुए, लेकिन अगर सेवा भाव नहीं है तो कोई पॉइंट ही नहीं है, फिर तो बीरबल की खिचड़ी होगी, है ना। तो क्या बीरबल ने आग जलाई थी? हाँ आग जलाई थी। क्या उसने आग के ऊपर खिचड़ी रखी थी? हाँ आग के ऊपर खिचड़ी रखी थी। क्या वो खिचड़ी कभी पकेगी? वो खिचड़ी कभी भी नहीं पकेगी, क्योंकि दूरी इतनी है आग और जो हांडी है उसमें दूरी इतनी है कि वो कभी भी उसकी आंच जो है उस हांडी तक नहीं पहुंचेगी। जब आंच हांडी तक नहीं पहुंचेगी तो खिचड़ी पकेगी कैसे? नहीं। तो ये जो सेवा भाव है, ये सेवा भाव हम लोगों को भगवान के करीब लाने का जरिया है, है ना। अगर एक श्रील प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि अगर एक लोहे की छड़ है, एक लोहे की लंबी सी डंडी है, सरिया है सपोज, है ना, उसको अगर हम भट्टी में रखेंगे और भट्टी जल रही है तो थोड़ी देर बाद हम उसको जो छड़ को बाहर निकालेंगे तो क्या उसमें उस भट्टी के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। जिस प्रकार भट्टी में कोई भी चीज डालेंगे जल जाएगी, अगर हम उस गरम लोहे की छड़ को अगर हम किसी चीज से भी छुएंगे तो वही प्रभाव होगा, है ना, क्योंकि वो छड़ ने भट्टी का संग किया, उसके साथ चिपक गई आग के, जो छड़ है उसके बिल्कुल साथ आके आग के बिल्कुल बीच में आके स्थापित हो गई। तो बीच में आने से और उसमें टाइम बिताने से उस जो वो जो लोहे की छड़ है उसने आग का गुण ग्रहण कर लिया। है वो लोहे की छड़, हम ये नहीं कह सकते कि ये लोहे की छड़ नहीं है, वो लोहे की छड़ी है अभी भी, लेकिन उसने क्या किया, आग का जो गुण है वो स्वीकार कर लिया उसने। और जब तक वो लोहे की छड़ आग में पड़ी रहेगी तब तक उसमें वो आग वाला गुण जारी रहेगा उसके अंदर, है ना। लेकिन जैसे हम उस छड़ को बाहर निकालेंगे, जैसे हम उस छड़ को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आग का प्रभाव खत्म हो जाएगा, लोहे की छड़ ठंडी हो जाएगी। आप जितना मर्जी हाथ वाथ लगाते रहो कुछ भी फर्क नहीं, है ना। तो ये जो लोहे की छड़ को आग में डालने का काम है, ये सेवा भाव है। सेवा के माध्यम से जो जीव है, जो अभी भौतिक चेतना में पूरी तरह से उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, इस सेवा के माध्यम से वो कृष्ण के संग में आ जाएगा। और जब कृष्ण के संग में आएगा तो जो कृष्ण के गुण है, जो कृष्ण के आध्यात्मिक गुण है उसमें दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना। इसीलिए तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जो कृष्ण की अनन्य भाव से सेवा करता है उसमें देवताओं के सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, कुछ अलग से करने का प्रयास, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। वो क्यों हो रहा है, वो कृष्ण के संग का प्रभाव है, ना? तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं, कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा क्या है। तो कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा है कृष्ण के नामों का उच्चारण, है ना। जैसे जो सीता देवी है वो भगवान राम को क्या कहकर संबोधित करती थी, ए जी, क्या कहते हैं इसको, वो भगवान आपको राम कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है ना। भगवान कहते थे अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे मुझे अच्छा लगता है ना। कृष्ण हमारे स्वामी हैं। अगर कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे मुझे अच्छा लगेगा, तो हम क्यों नहीं बुलाएं, हम क्यों कृष्ण को उनके नाम से संबोधित नहीं करें। हम बार बार कृष्ण को उनके नाम से संबोधित करेंगे। और आचार्यों ने ये सुविधा प्रदान करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने ये सुविधा देने के लिए क्या किया, एक भगवान के नामों की एक माला भी दी। और वो जो भगवान के नामों की माला है उसको हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे भगवान का नाम लेने में अभी बहुत ज्यादा रुचि नहीं है, है ना। हम भगवान का नाम ले तो रहे हैं, लेकिन अगर कोई बोले चलो 24 घंटे लेकर दिखाओ, है ना, तो हम भगवान का नाम 24 घंटे अभी नहीं ले सकते। हमारी इतनी रुचि इतनी श्रद्धा नहीं है हमारे भगवान के नाम में, तो क्या करें। तो प्रभुपाद ने बोला फाइन, आपके अभी रुचि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगेगा, हर चीज होने में टाइम लगता है, आप कम से कम 16 माला रोज जप करो, मिनिमम है, इससे कम में बात नहीं बनेगी। और बाकी का जो समय है आप भगवान की और विभिन्न प्रकार की सेवाएं करने में लगा दें। तो जैसे कल जन्माष्टमी है, तो ये जन्माष्टमी हम सब लोगों के लिए एक मौका है कि हम लोग सेवा में आके जुड़े, है ना। और जन्माष्टमी में आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, हजारों लोग, हजारों श्रद्धालु भगवान का दर्शन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हजारों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं का मतलब क्या है कि बहुत सारी सेवाओं का मौका होता है ना। तो इन ये जो जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, राधा अष्टमी, इस तरह के जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, इन त्योहारों को हमें इनका पूरा फायदा उठाना चाहिए, हमें सेवा में जुड़ने का। अगर हम इस कौन के किसी भी मंदिर में जाएंगे जन्माष्टमी के दिन, गौर पूर्णिमा के दिन, हाँ आप देखना, मतलब अगर हजारों लोग आ रहे हैं तो लाखों लोग आएंगे उस दिन, अगर सैकड़ों आ रहे हैं तो हजारों लोग आएंगे, है ना। बहुत सारे पहली दफा भी आएंगे और बहुत सारे भक्त भी होंगे, तो वहां पे हमें मौका मिलेगा देखने के लिए कि ये कैसे सेवा कर रहे हैं, वो कैसे सेवा कर रहे हैं, ये कैसे सेवा कर रहे हैं। और बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की सेवाएं कर रहे होंगे, तो आप उन सबको देखोगे, अच्छा वो प्रसाद की सेवा कर रहा है, वो जप करवाने की सेवा कर रहा है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो जूते की सेवा कर रहा है, कोई सफाई की सेवा कर रहा है, कोई क्राउड कंट्रोल कर रहा है ना, कोई प्रचार कर रहा है, कोई लोगों को बता रहा है भगवान के बारे में, अलग अलग तरह की सेवाएं करते देखेंगे। तो हमारे मन में जब इतने सारे लोगों को इतनी सारी सेवाएं करते देखेंगे तो हमें लगेगा यार वो सेवा बहुत अच्छी है, सेवाएं सारी अच्छी हैं, लेकिन हमारा मन एक सेवा के प्रति आकर्षित हो जाएगा, है ना, वो सेवा बहुत बढ़िया है, तो हम उस भक्त के पास जाएंगे। या अगर हम उस भक्त को नहीं जानते, हम किसी दूसरे भक्त को जो हमारा जानकार है उसको बोलेंगे जरा हमारा उससे परिचय करा दो, हम भी उससे वो सेवा सीखना चाहते हैं। अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो ये मौका नहीं मिलेगा, है ना। जब हम उस भक्त से मिलेंगे, उससे सेवा के बारे में समझेंगे, तो एक रिलेशनशिप बन जाएगा, एक संबंध बन जाएगा। और वो संबंध ऐसा नहीं है जन्माष्टमी खत्म संबंध खत्म, वो संबंध आगे चलता रहेगा। आप बार बार उस भक्त से मिलोगे, उनसे जिज्ञासा करोगे, प्रश्न पूछोगे, कैसे और सेवा, इसको और अच्छे से मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ, या सेवा अच्छे से कैसे कर सकती हूँ, वो आपको और भक्त अच्छे से बताएंगे, आप सेवा में आगे बढ़ जाओगे। ये कारण है कि हमें ये जो त्योहार है इसमें हमें पूरा समय, हमें भगवान के मंदिरों में बिताना चाहिए। हमें श्रील प्रभुपाद की शरण में जो भक्त हैं उनके सानिध्य में हमें ये त्योहार बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाने चाहिए। और ऐसे नहीं एक कोने में घुमसुम बैठ के देखते रहो, है ना, या माला में हाथ डालो चलो काम खत्म हुआ। तो लोग बोलेंगे माला कर रहे हैं इससे क्या सेवा करने, बोले आप माला करो सुबह सुबह और पूरा दिन कृष्ण की सेवा में झोंक दो अपने आप को, है ना। तो ऐसा करेंगे, एक तो कृष्ण की सेवा करना वैसे ही बहुत सुखदायी है, बहुत कल्याणकारी है, लेकिन बर्थडे के दिन सेवा कर दी, बर्थडे के दिन तो कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी जो है वो भी जेब से 5-10 रुपए निकाल देते हैं। कृष्ण तो परम दयालु है, अगर बर्थडे वाले दिन वो एक्स्ट्रा दयालु हो जाते हैं। तो अगर हम जन्माष्टमी को गौर पूर्णिमा को कृष्ण की सेवा में लगेंगे और सिंसियरली गंभीरता से दिखावे के तरह नहीं, है ना, क्योंकि कृष्ण बहुत सारी बातें भगवद गीता में बोल रहे हैं। कृष्ण एक बात और बोल रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामसि धर्म भजामि। कृष्ण कह रहे हैं देखो अगर तुम अपनी वंचना करोगे अपने आप को धोखा दोगे तो मैं भी तुम्हें धोखा दूंगा। अगर हम सेवा का दिखावा करके वास्तव में सेवा नहीं कर रहे होंगे, कृष्ण बोलेगा बहुत अच्छी वेरी गुड, और वेरी गुड करते करते हल्के से ऐसे धक्का देते देते मंदिर से बाहर खड़ा कर देंगे। ये कृष्ण का स्वभाव है। कृष्ण जिस तरह से हम कृष्ण से व्यवहार करते हैं कृष्ण बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करते हैं, है ना। तो मैंने ये मान लिया कि हमारे मन में बहुत मैल है, दूषण है, हम सेवा करने जाते हैं भोग करके आ जाते हैं, वो सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम किसी भक्त के मार्गदर्शन में रहेंगे और वो भक्त बार बार आपको बोलता रहेगा ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, वो काम ठीक से करो, ये काम ठीक से करो, तो भोग प्रवृत्ति हमारे पास में आएगी लेकिन वो भक्त को देख के दूर भाग जाए, है ना। तो हमें ऐसे भक्त का संग कम करना चाहिए जो हमेशा शाबाशी दिए जा रहे हैं, है ना। हमें ऐसे भक्त का संग करना चाहिए जो हमें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं और साथ में हमारी कमियां भी दिखा रहे हैं। अगर कमियां नहीं दिखाएंगे तो सुधार कैसे होगा। अगर सपोज मैं आपको बोलता रहा हूं आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो 16 कला संपूर्ण हो, आप तो रोटी भी अच्छी बनाते हो, सब्जी भी अच्छी बनाते हो, ये भी अच्छा करते हो, वो भी अच्छा करते हो, प्रचार भी अच्छा करते हो, तो आप बोलोगे यार सब अच्छा कर रहा है, अच्छा ही चल रहा है मेरे साथ में, तो अब और क्या करूं एक्स्ट्रा, ओके है चलो यहीं पर टिका रहता हूं। हम आगे उठेंगे ही नहीं ऊपर। अगर हमने ऊपर उठना है तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपको बोलो प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये काम ऐसे नहीं इस तरह से करो, इस तरह से करोगे तो ये काम और अच्छी तरह से होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और कृष्ण को भी अच्छा लगेगा। आमतौर पे क्या होता है अगर कोई भक्त माता जी की बात पे खुश हो रही है इनको पता है मैं बहुत डांटता हूँ लोगों को। सो अगर आमतौर पे क्या होता है अगर कोई भक्त किसी को डांट दे चलो भैया टाटा बाय बाय नहीं, लेकिन हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमें कोई डांट रहा है, क्योंकि भक्त जो है वो ईर्ष्यावश नहीं डांटते, भक्त कल्याण की दृष्टि से डांटते हैं, है ना। तो अगर कोई भक्त ने हमें डांट दिया तो समझ लो आप परम भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि कोई आप पर नजर रख रहा है, कोई आपका ध्यान रख रहा है, कोई आपके बारे में सोच रहा है कि आपको आगे कैसे बढ़ाना है। नहीं तो सेवा करो भक्तों के मार्गदर्शन के अंदर, और ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में जो सेवा करो जो खुद बहुत अच्छे से बहुत ही उत्साह से सेवा कर रहे हैं, तो आप देखना आप भक्ति में कैसे आगे बढ़ोगे। तो आप देखना जो कृष्ण के आध्यात्मिक गुण हैं आप में धीरे धीरे प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा आपके मन से सारी चिंता दुख परेशानियां गायब हो जाएंगी। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। अगर हम कृष्ण परम ब्रह्म है, अगर हम कृष्ण का सानिध्य करेंगे सेवा के माध्यम से तो हम ब्रह्मभूत हो जाएंगे, हम में वो आध्यात्मिक गुण आ जाएंगे। और उसका पहला लक्षण ये होगा, भगवद गीता में कृष्ण बता रहे हैं, न सोचती न कांक्षा, कोई टेंशन नहीं होगी उसको, कोई बड़े से बड़ा अगर भौतिक दृष्टि से उसको कोई कष्ट आ गया तो बोलेगा ठीक है क्या हो गया, है ना। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किसी का क्या दोष है, अगर मुझ पर कोई विपत्ति आई है इसमें किसी का क्या दोष है, मेरे अपने कर्म थे, तत्तेनु कंपा सुसमीक्ष मानव भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, आत्मकृतम मैंने ही किए थे, विपाकम मतलब बुरे काम पाप, है ना, भुंजान एव आत्मकृतम, भुंजान मतलब भुगतना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर मेरे पे विपत्ति आई है कौन सी, मतलब इसमें किसी का क्या दोष है, मेरे अपने कर्म थे, सामने आ गए, जैसा मैंने बोया था वैसा काट रहा हूं, इसमें कृष्ण का भक्तों का कोई दोष नहीं है। और अगर विपत्ति आए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, हे कृष्णा अभी मेरा शरीर चल रहा है, अच्छा हुआ आपने विपत्ति दे दी, पहले ही बराबर कर रहे हो आप और मेरे मन में वैराग्य भी उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हो। इसीलिए तो महारानी कुंती ने बोला, हे कृष्णा प्लीज मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दो, क्योंकि जब हमारे पे विपत्तियां आ रही थी तो आप हमेशा हमारे साथ थे, अब विपत्तियां खत्म हो गई आप छोड़ के जा रहे हो, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। ये है आध्यात्मिक चेतना, है ना। जब हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, जब हम कृष्ण का स्वभाव अंगीकार कर लेंगे, फिर हम अपने भौतिक सुख और दुख से विचलित नहीं होंगे, हम बोलेंगे ठीक है सुख आया चला जाएगा, दुख आया चला जाएगा। ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण महान धरातल पर हम पहुंच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा के माध्यम से। अगर हम सेवा करेंगे तो सेवा के माध्यम से कृष्ण का हमें, जैसे हमने अभी बात की, हमें संग प्राप्त होगा, और कृष्ण के संग के माध्यम से हमारे भीतर हमारे आसपास जितनी भी गंदगी और जितना भी प्रदूषण है वो सब दूर हो जाएगा। जिस प्रकार कितना भी कीचड़ हो सूर्य की दृष्टि पड़ती है सब ठीक हो जाता है, है ना, यहां तक कि मल भी खाद में बदल जाता है, नहीं। सो उसी प्रकार जब कृष्ण की दृष्टि हमारे पर पड़ेगी तो हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी तुरंत दूर हो जाएंगी, और हमें इसके लिए सिर्फ भगवान के दिव्य नाम का जप करना है और